जकरिया अध्याय 2। अब आता है चौथा दर्शन, पद 1 से लेकर 4 तक। फिर मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है। तब मैंने उससे पूछा, तू कहां जाता है? उसने मुझसे कहा, यरूशलेम को नापने जाता हूं कि देखूं उसकी चौड़ाई कितनी और लंबाई कितनी है। तब मैंने क्या देखा कि जो दूत मुझसे बातें करता था वो चला गया, और दूसरा दूत उससे मिलने के लिए आकर उससे कहता है, दौड़कर इस जवान से कह। जकरिया को जवान कहता है क्योंकि उसने जब भविष्यवाणियों का आरंभ किया था वो जवान था। वो कहता है, दौड़कर इस जवान से कह। जकरिया अध्याय 2:4 में आगे लिखा है, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहर पना के बाहर भी बसेगी, अर्थात यरूशलेम अपनी सीमाओं से बाहर भी बसेगा। आज ये भविष्यवाणी पूरी हुई है। ये सब पिछली शताब्दी तक नहीं हुआ था, परंतु आज ये भविष्यवाणी पूरी हुई है। आज तो यरीहो तक आवास बसाए जा चुके हैं, जो यरूशलेम के केंद्र से लगभग 13 किलोमीटर के विस्तार में है। दूसरी ओर बेतलहेम और रामल्लाह तक। यरूशलेम का विस्तार हमारे युग में हुआ है और आज भी हो रहा है। जकरिया अध्याय 2:5। और यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग किसी शहर पना ठहरूंगा। दूसरे शब्दों में यरूशलेम का प्राचीन क्षेत्र लगभग 2 किलोमीटर ही था। आज उसकी शहरपना उसके मध्य एक छोटी सी दीवार दिखाई देती है। आज यरूशलेम का विस्तार 225 से 300 किलोमीटर के क्षेत्र में है। यहोवा ने कहा, उन्हें इस नगर की शहरपना बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो स्वयं ही उसके चारों ओर आग किसी शहरपना ठहरेगा। जकरिया अध्याय 2:5 में आगे लिखा है, और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। ऐसा अभी नहीं हुआ है और तब तक नहीं होगा जब तक यीशु फिर से नहीं आ जाता, क्योंकि वो उसका तेजोमय प्रकाश है। जकरिया अध्याय 2:6। यहोवा की यही वाणी है, देखो सुनो, उत्तर के देश में से भाग जाओ, क्योंकि मैंने तुमको आकाश की चारों वायुओं के समान तितर बितर किया है। परमेश्वर ने ही उन्हें तितर बितर किया था। नए नियम मत्ती की पुस्तक के अध्याय 24 में शिष्यों ने यीशु से पूछा था कि उसके फिर से आने के और अंतिम समय के चिन्ह क्या होंगे। उसने एक चिन्ह ये दिया था कि झूठा मसीहा आएगा। कुछ समय पहले समाचार था कि झूठा मसीहा आ गया है, जो रेडियो और टीवी पर दर्शन देगा। वो समस्त जातियों के लिए शांति और समृद्धि के युग की स्थापना करेगा। संपूर्ण जगत यद्यपि उसकी भाषा को नहीं समझता, मानसिक संदेश प्राप्त करेगा। वो जो भी भाषा बोलेगा उसे आप अपनी भाषा में सुनेंगे। इस समूह ने उसके प्रचार में 2 करोड़ रुपए व्यय किए और दावा किया कि वो 2 माह में प्रकट होगा। यीशु ने कहा, लोग कहेंगे, देखो मसीह यहां है, या मसीह वहां है, या गुप्त स्थान में है। ये कहते हैं अभी वो गुप्त है और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर परामर्श दे रहा है। संसार उसके परामर्श का पालन कर रहा है। मत्ती 24 में यीशु ने अपने शिष्यों को इसी भ्रम से सावधान रहने के लिए कहा था। इसी अध्याय में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि ऐसी महान विपत्ति आएगी जैसी पहले कभी नहीं आई। चांद लहू सा लाल हो जाएगा और सूरज अंधेरा हो जाएगा, तब प्रभु का दिन आएगा। सितारे टूटकर गिरेंगे और अंजीर समय से पूर्व फल देगा, और विपत्ति के युग के तुरंत बाद वे मसीह यीशु को महान महिमा में बादलों पर आता देखेंगे। उस समय उसके चुने हुए संसार के कोने कोने से एकत्रित किए जाएंगे। वे जो कलीसिया के उठाए जाने को विपत्ति के बाद की घटना कहते हैं, वे इस पद 30 को अपना आधार मानते हैं। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। जकरिया स्पष्ट करता है कि ये चुने जन कलीसिया नहीं अपितु इसराइल है। इसकी पुष्टि यशिया की भविष्यवाणी में की गई है। यहोवा कह रहा है, आ जाओ। रूस में हजारों यहूदी हैं जो इसराइल लौट आने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु रूस अभी बहुत ही सीमित यहूदियों को निष्कासन प्रदान कर रहा है। परंतु परमेश्वर कह रहा है, देखो सुनो, उत्तर के देश में से भाग जाओ। जैसे परमेश्वर ने उन्हें आकाश की चारों वायु के समान तितर बितर किया है। जकरिया अध्याय 2:7। हे बाबुल वाली जाति के संग रहने वाली सियोन को बचकर निकल भाग। अर्थात आज जिस व्यापार के कारण तुम लोग वहां हो उसे छोड़कर आ जाओ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर व्यापार के प्रति रोष प्रकट कर रहा है, क्योंकि उसके कारण मनुष्य की जीवात्मा दास बनाई जाती है। व्यापारी प्रायः अनुचित लाभ उठाते हैं। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 18 में वो बाबुल के धर्म तंत्र के विनाश का उल्लेख करता है। प्रकाशित वाक्य में बाबुल के व्यापार तंत्र के विनाश की भविष्यवाणी के समय भी परमेश्वर ठीक यही कह रहा है कि वहां से निकल आओ। ये वही बात है जो वो कह रहा है, हे मेरे लोगों, उस में से निकल आओ। जकरिया अध्याय 2:8। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यू कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती है, क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। अब परमेश्वर यहूदी लोगों के संबंध में कह रहा है, मैं नहीं जानता हूं कि यहूदियों के बारे में आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, परंतु यदि आप उन्हें छुएंगे तो आप परमेश्वर की आंख की पुतली को छुएंगे। क्योंकि मैं यहूदियों और इसराइल के पक्ष में बोलता हूं, इसलिए आप अचंभा करेंगे कि मुझे अनेक पत्र प्राप्त होते हैं जिनमें अधिकांश पादरी लोगों से होते हैं। वे सब मुझे झिड़कते हैं कि मैं इसराइल के पक्ष में क्यों बोलता हूं। मुझे घृणा से भरे पत्र प्राप्त होते हैं, परंतु मैं परमेश्वर की इस बात को मानता हूं, जो उनको आशीष देते हैं परमेश्वर उनको आशीष देता है, और जो उनको श्राप देते हैं परमेश्वर उनको श्राप देता है। परमेश्वर कहता है, जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को ही छूता है। मैं जानता हूं कि वे दूत के धुले नहीं हैं, उन्होंने परमेश्वर से मुंह मोड़ रखा है, उन्होंने हॉलीवुड को अपने वश में कर रखा है। मैं जानता हूं उनके द्वारा अनेक कष्ट आए हैं। मैं जानता हूं कि अनेक जन इनसे घृणा करते हैं और उनके प्रति मन में कटुता रखते हैं। जो भी है, उन्हें मत छूना, क्योंकि उन्हें छूने का अर्थ है परमेश्वर की आंख की पुतली को छूना। जकरिया अध्याय 2:9-10। देखो, मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा, तब वे उन्हीं से लूटे जाएंगे जो उनके दास हुए थे। तब तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख, मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। यीशु के द्वितीय आगमन की अद्भुत भविष्यवाणी है। उन्हें आनंदित और मगन होना है, क्योंकि प्रभु आकर उनके मध्य वास करेगा। जकरिया अध्याय 2:11-13। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी, और मैं तेरे बीच में वास करूंगा, और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है, और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुपके रहो, क्योंकि वो जाकर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है। धर्मशास्त्र के अनुसार यीशु फिर से आएगा और 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेगा। उसका सिंहासन यहूदा के यरूशलेम में होगा। पूरा यहूदा उसका निज भाग होगा और पृथ्वी के राजा प्रति वर्ष आकर उसे उपहार चढ़ाएंगे। वो संपूर्ण पृथ्वी का प्रभु होगा और मानव जाति उसकी उपासना करेगी। इस महिमा के युग में हम उसके साथ इस पृथ्वी पर उपस्थित होंगे और राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:5-6। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें अपने पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। आगे चलकर अध्याय 5 में मेमने ने जब पुस्तक ली और उसकी मोहर खोले, तब उसका स्तुति गान किया गया, जिसमें ये शब्द भी थे, उन्हें हमारे लिए एक राज्य और परमेश्वर के लिए याजक बनाया और पृथ्वी पर राज्य करते हैं। परंतु पृथ्वी के राजा इकट्ठे होंगे और पृथ्वी पर प्रभु शासन करेगा, कैसा महिमा! पृथ्वी को धार्मिकता ढांप देगी, जैसे पानी समुद्र को ढांप देता है। यदि आपके हाथ से ये निकल गया तो जीवन का अर्थ ही समाप्त हो गया। आपको यहां रखने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप मसीह यीशु को अपना प्रभु और राजा स्वीकार करें, जिससे आपको अनंत काल के लिए उससे प्रेम करने का, उसकी सेवा करने का और उसके साथ जीवन व्यतीत करने का सुअवसर प्राप्त हो। यदि आप यहां इन बातों से चूक जाते हैं तो आपका जीवन व्यर्थ और खोखला है। यही कारण है कि अनेक जनों ने अपना जीवन गवा दिया है। वे सांसारिक सुख भोग, सांसारिक प्रतिष्ठा के लिए जीवन व्यतीत करते रहे। उन्होंने अनंत जीवन पर ध्यान नहीं दिया।